31 प्रत्येक वर्ष के अंत में यदुशाला में एक विशाल यज्ञ हुआ करता था। उस यज्ञ के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने एक विचित्र प्रथा चला रखी थी। यदुशाला के प्रत्येक शिष्य को यज्ञ में बलि देने के लिए एक एक जीवित प्राणी अरण्य में से पकड़कर लाकर अर्पण करना पड़ता था। किसी ने उनसे उस प्रथा के संबंध में पूछा था। उसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था कि इससे विद्यार्थी स्वावलंबी और साहसी बनता है। एक बार वार्षिक यज्ञ के समय एक अविस्मरणीय घटना घटी। हम सभी लोग जीवित प्राणी लाने के लिए राजनगर से अरण्य की ओर चले। अरण्य प्रारंभ होते ही सभी लोग भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल गए। मैंने पूर्व दिशा को पकड़ा। चलते चलते मन विचार आया कि सबसे इससे पहले हरिण, सांभर, वन्य, शुकर आदि प्राणी मैं अर्पण कर चुका हूँ। इस वर्ष इनसे बलवान कोई प्राणी मुझको अर्पण करना चाहिए। उनसे अधिक बलवान प्राणी कौन सा था? हाथी छी, लकड़ियाँ तोड़ने वाला भारी भरकम और कुडोल शरीर है तो अश्व? नहीं जी, अश्व को पकड़ा तो जा सकेगा लेकिन पकड़ने में दो चार दिन तो लग ही जाएंगे। तब तो यज्ञ हो भी चुकेगा। फिर कौन सा प्राणी? चित्रमृग, वृक, तरस छी। सबसे अधिक सामर्थ्यवान प्राणी कौन सा है? बाघ। बस इस वर्ष मैं बाघ ही अर्पण करूंगा। उसके लिए घोर अरण्य में जाना पड़ेगा। कोई चिंता नहीं, अवश्य जाऊंगा। सीमा पार करते हुए ही मैंने निश्चय किया। लंबे लंबे डग भरता हुआ चौकन्नी दृष्टि से चारों ओर देखता हुआ मैं आगे बढ़ने लगा। दिन भर घोर अरण्य में भटका। अनेक पक्षी मिले किंतु बाघ दिखाई ही नहीं दिया। दिन भर भटकने के कारण प्यास बड़ी जोर से लग रही थी। संध्या घिरती आ रही थी। व्यग नीड़ों की ओर लौट रहे थे। मुंह का पसीना पोंछता हुआ मैं बहुधा नदी के किनारे पर आया। वहां खड़े होकर मैंने सूर्यदेव को वंदन किया और मन ही मन कहा, आज आपके शिष्य का संकल्प व्यर्थ हो रहा है। एक काले पत्थर पर बैठकर मैंने अंजलि में पानी लिया। उस समय पानी को मुंह से लगाने ही जा रहा था कि एक प्रचंड भारी भरकम पशु पीछे से मेरे ऊपर आ गिरा। मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं आगे बहुधा नदी के पानी में गिर पड़ा। मेरे साथ ही वह पशु भी पानी में आ गिरा। बहुधा का जल खबीला हो गया। मैंने उस पशु की ओर देखा। श्वेत और काले धब्बों वाला एक चीता था। संध्या होने के कारण वह पानी पीने के लिए घाट पर आया था। उसका मुंह कुम्हड़ जैसा गोलमटोल था। उसकी आंखें गुंजा की तरह लाल थी। मेरी आंखें आनंद से चमकने लगी। मैं पानी में हूँ, मेरे वस्त्र भीग गए हैं। इन बातों का मुझको बिल्कुल भान नहीं रहा। उसको मारने के लिए उसने अपना पंजा उठाया। मैंने अपने हाथ से ऊपर पकड़ लिया और उसको खींचता हुआ एकदम पानी के बाहर ले आया। परंतु पानी के बाहर आते ही चीते में और अधिक आवेश आ गया। मेरे हाथ से झटका देकर उसने अपना पंजा छुड़ा लिया। जल के इस स्पर्धा से तथा मेरे विरोध से वह बौखला गया था। उसकी क्रुद्ध आंखों में आग बरसने लगी। जोर जोर से गर्जन करता हुआ वह बार बार मुझ भयानक आक्रमण करने लगा। कभी कभी वह 5-6 हाथ लंबी छलांग लगाता। उसकी रक्त वर्ण जीव मेरा रक्त पीने के लिए निरंतर लपलपाने लगी। जबड़ा फाड़ कर वह मेरे ऊपर झपटा। मैं उसके आक्रमणों का प्रत्युत्तर देने लगा। आधी घड़ी तक मैं अपनी रक्षा करने का प्रयत्न करता रहा लेकिन मैं उसको रोक नहीं पा रहा था। मैंने अपने देह की ओर देखा। वह क्रूर वन्य पशु ने सैकड़ों बार झपट्टे मारे होंगे परंतु फिर भी उसकी तीक्ष्ण दांतों की अथवा नाखूनों की जरा सी नोक भी मेरे शरीर में घुसी नहीं थी। मेरी त्वचा अभेद्य है, यह केवल अकेला ही क्या, ऐसे 10 चीते मुझको नींद में भी नहीं खा सकती। विद्युत किसी तरंग से मेरे देह में सनसनी चली गई। क्षण भर में मेरा शरीर रथ की तरह तप्त हाल की तरह जलने लगा। मेरी संपूर्ण त्वचा अभेद्य है, केवल इस प्रतीति मात्र से मेरा शरीर अंगारे की तरह फूल उठा। अकस्मात मैंने उस क्रूर पशु के मुंह पर कसकर तमाचा मारा। वह तड़प कर दूर हट गया। अब मैंने उस पर भयंकर आक्रमण करना प्रारंभ किया। एक के बाद एक बधे मुट्ठी के सशक्त प्रहार उसकी पीठ पर, पेट पर, गर्दन पर जहां स्थान मिला वहीं करने लगा। अब वह पहले से अधिक बौखला हुआ मुझ पर आक्रमण करने लगा। लगभग 2 घड़ी तक हम दोनों में द्वंद्व युद्ध होता रहा। अंत में वह थक गया। मेरे रक्त की एक बूंद तक उसके जीव को प्राप्त नहीं हो सकी थी। थोड़ी देर पहले गरजने वाला वह चीता अब भीतर ही भीतर गुर्राने लगा। वह से अपनी पूंछ दोनों पैरों के बीच में कर ली थी। मैं उसकी छाती पर बैठ गया। आसपास 15-20 हाथ के घेरे में घास पूरी तरह कुचल गई थी। पास ही झाड़ी से एक अन्य वन्य लता मेरे पैरों तक आ गई थी। एक हाथ से मैंने उसको खींचा लिया। जोर से एक झटका मारते ही 15-20 हाथ लंबी वह दृढ़ लता जड़ से उखड़कर मेरे हाथ में आ गई। उस लता से मैंने उस चीते को दो पैर एक जगह कसकर बांध दिए। हाड़ मांस की सफेद काली एक गठरी तैयार हो गई। अंधकार गिरने लगा था। उस प्राणी को कंधे पर रखकर चंद्रकला के धूमिल प्रकाश में नगर की ओर मुड़ा। नगर में मैं जिस समय पहुंचा उस समय अर्धरात्रि हो गई थी। अत्यंत शीतल पवन शरीर को शून्य किए दे रहा था। अपने उत्तरी को मैं बहुधा नदी के पानी में भूल गया था। देह पर भीगे वस्त्र धूल से लथपथ हो गए थे। संपूर्ण नगर निद्राधीन था। केवल बादलों के गड़गड़ाहट से चीते के गुर्राने की आवाज ही आ रही थी। मैं युद्धशाला में आया। अन्य समस्त शिष्य वन वन भटक कर जिन प्राणियों को लाए थे वे सब लकड़ी के घर में बंद कर दिए गए थे। उन्हीं में मैंने अपने कंधे पर रखा हुआ चीता फेंक दिया जो अपनी मूछों के बालों से मेरी गर्दन पर अब तक गुदगुदी कर रहा था। उस घर के सभी प्राणी भय से किकियाने लगे। मैं जल्दी जल्दी अपने कक्ष में गया और वस्त्र बदलकर सोने चला गया। प्रातःकाल विधिवत यज्ञ प्रारंभ हुआ। अंत में वेदी पर बल देने का अवसर आया। बलि देने के लिए सभी लकड़ी के घर की ओर दौड़े। उनमें से एक शिष्य भीतर जाकर घबरा कर उल्टे पैरों लोट कर यज्ञ कुंड के पास आया। उसने घृणित द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव बलि के लिए कोई चीता ले आया है। चीता, चलो देखें। आश्चर्य से उनकी सफेद भौहें तन गई। गुरु द्रोणाचार्य के साथ हम सब लोग उस घर के पास गए। मुझको आशा थी कि उस चीते को देखते ही गुरुदेव पूछताछ करेंगे और मेरे पीठ ठोकेंगे, परंतु मस्तक को अत्यधिक संकुचित करते हुए बोले, इस चीते को कोई क्यों लाया है? अरे यज्ञ तो शांति के लिए किया जाता है। यज्ञ में चीते की बलि देना निषिद्ध माना गया है। छोड़ दो अब इस चीते को। परंतु उसको छोड़ने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। अंत में अकेला भीम आ गया। मेरी बधी हुई बेल उसने खोली। जो कुछ हुआ था उससे वह चीता अत्यंत भयभीत हो गया था। अपने प्राणों के डर से वह लकड़ी के घर की चार दीवारी में बहुत ऊंची छलांग मार लगाकर क्षण भर में ही अदृश्य हो गया। मेरी आशा खंड खंड हो गई। उसका दुख तो मुझको हुआ ही, परंतु पूछो तो मुझे गुरुदेव द्रोण के उस निकम्मे जीवन दर्शन से चिढ़ सी लगी। यज्ञ में क्रूर और हिंस्र पशुओं की बलि क्यों न दी जाए? निरपराध बकरे की अपेक्षा वास्तव में चीते जैसे पशुओं की बलि ही देनी चाहिए। 32। बहुत दिन हो गए थे। मैं जब से हस्तिनापुर आया था तब से केवल एक बार ही चंपा नगरी गया था, वह भी उस समय जब गुरुदेव द्रोण ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली थी। उसके बाद 5 वर्ष बीत गए थे। इच्छा होने पर भी उन 5 वर्षों में मैं एक बार भी चंपा नगरी को नहीं गया था, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी के रूप में आया था। सब याग से मुझको अपने गुरु बहुत अच्छे मिले थे। जिनके गुरुओं का गुरु कहा जाता है ऐसे ही थे वे। साक्षात सूर्यदेव मेरे गुरु थे। हस्तिनापुर के अखाड़े में पत्थर के चबूतरे पर खड़े होकर मन ही मन निश्चय कर मैंने उनका शिष्यत्व अंगीकार किया था। उन्होंने भी अब तक मेरे साथ अपने शिष्य का सा व्यवहार किया था। 6 वर्षों में इस कालखंड में उन्होंने कितने दुर्लभ रहस्य मुझको बताए थे। वे किस भाषा में बताते थे यह तो मैं नहीं कह सकता, परंतु उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा था वह मैं तुरंत ही ग्रहण कर लिया था। क्या नहीं सिखाया था उन्होंने मुझको? बाणों के दुष्कर प्रक्षेप, द्वंद्व के कठिन हाथ, घोड़ा हाथी और ऊँटों की उच्छृंखल प्रवृत्तियों को वश करने की कलाएँ, सब बातें उन्होंने मेरे कानों में कही थी चुपचाप मौन भाषा में। प्रतिदिन प्रातः अपने कोमल किरणों से असंख्य कलियों के मुदे फलक खोलते हुए वे मुझसे कहते थे, कर्ण तुझको भी ऐसा ही बनना चाहिए। अपना सर्वस्व मुक्त हाथ से जो कोई मांगे उसको देकर अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों का जीवन तुझको ऐसे ही खिलाना चाहिए। कितने श्रेष्ठ थे मेरे गुरु। संसार के किसी गुरु ने अपने शिष्य को इतनी छोटी सी बातों से इतना उदात्त उपदेश कभी दिया है? अभी एक बार चंपा नगरी में जाकर उन गुरु के चरण गंगा के स्वच्छ जल में अवश्य धोने चाहिए। अब मैं गंगा माता नहीं कहता हूँ, गंगा कहता हूँ, क्योंकि शैशवावस्था की श्रद्धा व्यवहारिकता के पाषाण से भोथरी हो गई थी। माँ एक होती है जो जन्म देती है और पालन पोषण करती है। वह नदी तो नदी है, वह माता कैसे हो सकती है? मेरी माता एक ही थी, राधा माता। उसे मिले भी बहुत दिन हो गए थे। अब वह मुझको देखेगी तो क्या सोचेगी? मुझको पूरा विश्वास था कि मेरे जाने पर वह सबसे पहले मुझसे यही पूछेगी, कितना लट गया है रे वसु तू, और तू गंगा के पानी में तो नहीं गया था ना कभी? क्योंकि पुत्र कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माता की दृष्टि में वह सदैव बालक ही रहता है। माता ही विश्व में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रेम को व्यवहार की तुला पर बिल्कुल ज्ञान ही नहीं होता। वह जानती है कि अपने पुत्र का केवल वास्तविक प्रेम करता है। मैंने शोण को बुलाकर कहा, शोण यात्रा की तैयारी करो, कल चंपानगरी चलना है। उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। शाल वृक्ष की तरह लंबे तड़ंगे होकर अनेक वर्षों बाद पहली बार हम चंपानगरी की ओर जा रहे थे, अपनी जन्मभूमि की ओर। 33। दूसरे दिन मैं और शोण दोनों हस्तिनापुर से चल दिए। यात्रा बहुत लंबी थी इसलिए हमने श्वेत घोड़े लिए। हम दोनों को ही अब अश्वारोहण का अच्छा अभ्यास हो गया था। मुझे तो सब प्राणियों में अश्व बहुत ही अच्छा लगता था। वह कभी नीचे नहीं बैठता है, सोते समय भी वह खड़े खड़े एक पैर के खुर को मोड़कर नींद ले लेता है। अश्वों के सभी स्वभाव का मैंने बड़ा सूक्ष्म निरीक्षण किया था। कितना उच्छृंखल क्यों न हो, उसका वश में कैसे किया जाता है यह मैं अच्छी तरह जान गया था। और फिर यह हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता हुआ व्यवसाय था। प्रत्येक को अपने व्यवसाय में प्रवीण होना ही चाहिए। संजय काका ने सारथी के रूप में यह जो उपदेश दिया था उसको मैं कैसे भूल सकता था। हम लोग हस्तिनापुर की सीमा से बाहर निकले। वसंत ऋतु के दिन थे। चारों ओर भिन्न भिन्न रंगों के फूल सुशोभित थे। बाबा के वृक्ष छोटे छोटे पीले फूलों से लद गए थे। खैर के वृक्ष हल्के लाल फूलों से भरे हुए थे। अंजनी के वृक्षों पर नील कुसुम सुशोभित हो रहे थे। उन समस्त वृक्षों पर प्रकृति देवता की इतनी कृपा दृष्टि देकर पलाश अत्यधिक क्रुद्ध हो उठा था। उसका संपूर्ण शरीर रक्तवर्णी लाल सुमनों से आच्छादित था। यही कारण था कि सभी वृक्षों में वह अकेला ही अत्यधिक आकर्षक दिख रहा था। उन समस्त पुष्पों की एक मिश्रित सुगंध वातावरण में तैर रही थे। शेन, क्रौंच, भारद्वाज, कोकिल, कपूत आदि भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षियों के सम्मेलन का तो यह समय था ही। अपने अपने गीत वे पंचम स्वर में गा रहे थे। वसंत, वसंत का अर्थ है प्रकृति देवता के स्वच्छंद रंग मंच में। वसंत अर्थात एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सप्त स्वरों के खिलाड़ियों का कबड्डी संघ। वसंत है काल के बाड़े में अटका हुआ निसर्ग देवता के अतलसी वस्त्र का एक सुंदर धागा। अथवा वर्षा ऋतु में चंचल वर्षा ने अपने निरंतर गिरती धाराओं के उंगलियों से वर्षा ऋतु को जो गुदगुदी की थी उससे हंसी आने के कारण इधर उधर पैर पटकते समय नीचे गिरा हुआ उसके पैर का सुंदर नुपुर छी, किसी तरह भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बसंत तो बस बसंत ही है। निसर्ग देवता के मनोहर रूपों को देखते हुए हम अपनी यात्रा कर रहे थे। रात होने पर समीप किसी नगर में ठहर जाते थे। इसी प्रकार 8 दिन बीत गए। अनेक नदियां और पर्वत पार कर हम 9वें दिन प्रयाग पहुंचे। प्रयाग, यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों का संगम था। यहाँ से चंपा नगरी अब केवल 25 योजन दूर रह गई थी। संगम पर जाकर 3 नदियों का मिलन एक बार देखने की इच्छा से हमने नगर में प्रवेश करते ही अपने घोड़ों को संगम की ओर मोड़ दिया। संध्या का समय था, हम संगम पर आए। मथुरा की ओर से यमुना आ रही थी, कापिल्य नगर की ओर से गंगा प्रवेश कर रही थी और अयोध्या की ओर से सरस्वती दौड़ रही थी। तीनों के जल के 3 भिन्न भिन्न प्रवाह स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे। गंगा का जल एकदम श्वेत शुभ्र, यमुना का कुछ काला सा और सरस्वती का कुछ लाल सा। इन तीनों के मनोभाव भिन्न भिन्न थे, लेकिन फिर भी ये तीनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर सागर में हिलने जा रही थी। वह भी आगे केवल एक ही सुंदर नाम गंगा धारण कर। उस त्रिवेणी संगम को देखते हुए मेरे मन में एक विचित्र विचार खोद आया। जो बात प्रकृति ने इन नदियों को सिखा दी थी उसको मनुष्य को सिखाना वह कैसे भूल गई। मनुष्य जाति के तथा ऊंच नीच के झूठे विचारों का प्रवाह एक दूसरे के विरुद्ध क्यों बहाता है? यह प्रवाह किस समुद्र में जाकर मिलेंगे? भेद के विशाल छिद्र से आखिर क्या निकलेगा? विनाशी तो एक दूसरे को समझ समझाकर मनुष्य भी हाथ में हाथ लेकर अपने सभी भावों का प्रवाह एक कर दे तो, परंतु यह संभव नहीं, क्योंकि नदियां नदियां होती है और मनुष्य मनुष्य होता है। शायद मनुष्य ही संसार में एकमात्र ऐसा है जो अपनी मूर्खता से अपने ही विनाश के गड्ढे खोदा करता है। मैं उन तीनों नदियों के इकट्ठे जल में से अंजलि भरी और उसका सूर्यदेव को अर्घ देता हुआ मन ही मन बोला, देव, जो शरण शक्ति इन 3 नदियों में है वही मुझको दीजिए। मुझको ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे मैं अन्यजनों की अच्छी तरह समझ सकूं, मेरे मन को अहंकार कभी स्पर्श भी न कर सके। अश्वों को पानी पिलाकर हम नगर में जाने के लिए मुड़े। घोड़ों की रश्मियां हाथ में लिए हम चल रहे थे। कुछ स्त्रियां पानी लेकर नगर की ओर लौट रही थी। मैं पश्चिमी क्षितिज की ओर देखता हुआ चल रहा था। इतने में शोण के अश्व ने पानी लेकर लौटते हुए एक स्त्री की गर्दन में पीछे से अपने फड़कते हुए ओंठ लगा दिए। उसके शीतल स्पर्श वह स्त्री घबरा गई। चीख मारकर उसने सिर पर रखा हुआ घड़ा एकदम फेंक दिया। वह घड़ा मेरे पैर पर आकर गिरा और फूट गया। मेरा उत्तरी भींग गया। वह स्त्री घबरा गई थी। मेरी ओर देखकर तो उसकी घबराहट और अधिक बढ़ गई। क्षण भर उसने अपने पलक जल्दी जल्दी झपकाए। उसका पलक झपकाना मुझको बड़ा अच्छा लगा। फिर वह अपने पैर के अंगूठे से धरती कुरेते हुए इसे झुकाकर चुपचाप खड़ी रही। घड़े का पानी उसके शरीर पर भी फैल गया था, इससे उसका वस्त्र जगह जगह उसके देह से चिपट गया था। संगम की ओर से आने वाली हवा के झोंकों के साथ उसके केशों की बिखरी हुई 4-5 लटें इधर उधर उड़ रही थी। बहुत से केश पानी से भीग कर गालों से चिपक गए थे। उसका रंग केवड़े की तरह एकदम पीला था। मैं पहली बार ऐसी सुंदर स्त्री देख रहा था। अपने अंगों को सिकोड़ कर वैसे खड़ी थी जैसे आंधी में अपने घोंसलों में अपने पंखों को समेट कर कोई पक्षणी बैठी हुई है। मैं स्वर से कुछ कहने जा रहा था कि इतने में एक सखी आगे बढ़कर झुककर बोली, महाराज क्षमा कीजिए, उसकी असावधानी के कारण आपके वस्त्र भींग गए हैं। मैं महाराज हूँ या किसने कहा? मैं कर्ण हूँ। मेरे भाई की इस स्वर्ण की लापरवाही कारण आपका घड़ा फूटा है, इसलिए मुझे को आपसे क्षमा मांगनी चाहिए, मैंने कहा। नहीं नहीं, परंतु आप तो महाराज जैसे दिखाई पड़ते हैं, वह घबरा कर बोली। नहीं, मैं सूत पुत्र कर्ण हूँ, चंपा नगरी की अधीरज जी का ज्येष्ठ पुत्र। सूत पुत्र? तब तो फिर यह भी सूत कन्या है, वह उस सुंदर स्त्री की बांह पकड़कर आगे खींचती हुई बोली। सूत कन्या? मैंने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि ऐसा सौंदर्य हमारे कुल में कैसे संभव हो सकता था। जी हाँ, प्रयाग के सर्वश्रेष्ठ सारथी सत्यसेन की बहन वृषाली। मैंने उसी की ओर देखा। उसने अभी तक अपना मुंह ऊपर उठाया नहीं था। रात दिन युद्धशाला में शिक्षण प्राप्त करने वाला मुझ जैसा जंगली व्यक्ति स्त्री के संबंध में भला क्या कह सकता था, परंतु उसको देखते ही मुझको बड़ी तीव्रता से अनुभूति हुई कि स्त्री विश्वकर्मा का अपनी पहली सुख निद्रा में धीरे से छोड़ा हुआ निश्वास है। सूर्यदेव ने आकाश में जैसे गुलाबी रंग का घड़ा ही फोड़ दिया था, इसलिए इतने आनंदित हुए थे वे। मुक्त हस्त होकर बिखरे हुए उस गुलाबी रंग को देखते हुए मैंने शोण से कहा, शोण, चल, देर हो रही है। चलने से पहले यूं ही मन बहलाने के लिए मैंने उस फूटे हुए घड़े के खपड़े का एक टुकड़ा उठा लिया। दूसरे दिन हमारे अश्वन चंपा नगरी की सीमा में प्रवेश किया। नगर के बाहर का वह विशाल पठार आया। इसके दर्शन से मेरे मन के बामे में से स्मृतियों की चीटियां इधर उधर नाचने लगी। 6 वर्ष पहले इसी पठार पर एक उन्मत्त वृषभ से नई टक्कर हो गई थी। उस समय मैं मूर्छित हो गया था। यदि वैसा भी कोई वृषभ इस समय मेरे सामने आ खड़ा हो जाता तो मुझको पूरा विश्वास था कि मेरी पुष्ट भुजाएं उसको इस तरह रोक लेती जैसे वह तिल भर भी इधर उधर न हिलने पाता। हम लोग पर्णकुटी के द्वार पर आए। घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर राधा माता पर्णकुटी से बाहर आई। हम लोगों को देखते प्रसन्नता से उनका मुख कमल खिल उठा। इसके सभी क्रियाकलाप हड़बड़ी में होने लगे। वह झटपट भीतर गई और एक थाल में जलते हुए कुछ अंगार रख लाई। मैंने दहली पर खड़े खड़े उसे पूछा, जाते समय तो एक चांदी की पेटका दी थी, अब यह अंगार किस लिए लाई हो? कुछ न कहकर उसने मुट्ठी में लगी मिर्चें उन अंगारों पर डाल दी। थाली हमारे चारों ओर फिराई, मिर्च की उग्र गंध से शोण को खांसी आ गई। वह उस थाली को बाहर ले जाकर दूर उलट आई। 5 वर्ष बाद मैंने अपने पर्णकुटी में पैर रखा, परंतु भीतर जाते समय दरवाजे की चौखट से मस्तक धड़ाक से टकराया। कितना ऊंचा हो गया है रे कर्ण, राधा माता आश्चर्य से बोली। कर्ण नहीं वसु, मैंने उसके चरण छूते हुए कहा। उसने झटपट उठाकर मुझको छाती से लगा लिया। कानों के कुंडलों को वह बार बार हाथ से टटोल कर देखने लगी। उसकी आंखों में अश्रु तैर उठे। अंत में अंशुक के छोर को अपनी आंखों से लगाते उसने मुझसे पूछ ही लिया, गंगा के पानी में तो कभी नहीं गया था ना? यह सब सब अब सोण से ही पूछ ले रहा। मैंने उसके चरणों पर सिर रख दिया। मेरे जीवन का वही एकमात्र पवित्र प्रयाग था, वही मेरी गंगा यमुना और सरस्वती थी, मेरी पर्णकुटी ही मेरा मंदिर था। 35। 15 दिन चंपा नगरी में रहकर हम लोग हस्तिनापुर को लौटे, परंतु यदुशाला में एक चिड़िया तक नहीं थी। चारों ओर शांति थी, केवल सब कुछ उड़ा हुआ सा लग रहा था। वास्तव में इस समय तो यहाँ यदुशाला में शस्त्रों की झंझनाहट होनी चाहिए थी, फिर आज ही क्या ऐसा क्यों है? राजनगरी में कोई अशुभ घटना तो नहीं घटी? संदेह का कछुआ बार बार अपनी गर्दन बाहर निकालने लगा। हमने युद्धशाला में घोड़े बांध दिए। मैं विचार कर रहा था कि राजभवन गए बिना इस शाम सुम का रस समझ में नहीं आएगा। इतने में महाद्वार से भीतर आता हुआ अश्वत्थामा मुझको दिखाई दिया। जैसे वह हमारे पास आया, मैंने उससे पहला प्रश्न किया, अश्वत्थामन, आज संपूर्ण युद्धशाला इस तरह सुनसान क्यों है? समस्त योद्धा नगर से बाहर गए हुए हैं, उसने उत्तर दिया। किस लिए? स्पर्धा का अखाड़ा तैयार करने के लिए। स्पर्धा? कैसी स्पर्धा? सब योद्धाओं की, सभी शस्त्रों की, यहाँ की शिक्षा की अंतिम कसौटी। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसको सारा हस्तिनापुर वीर का सम्मान देगा। राजमाता उसको कुमकुम तिलक लगाएंगी, नगरजन हाथे पर उसका जुलूस निकालेंगे। कब होंगी यह स्पर्धाएं? मैंने उत्सुकता से पूछा। आगामी बसंत पूर्णिमा को। आज ही अमात्य विश्ववर्मा ने सभी देशों के राजाओं को आमंत्रण भेजे। यदुशाला का वह अखाड़ा तो बहुत छोटा था, इसीलिए नगर के बाहर एक भव्य अखाड़ा तैयार किया जा रहा है। विगत 15 दिनों से सब वही हैं, अहर्निश अथक परिश्रम कर रहे हैं। स्पर्धा? केवल 8 दिन बाद। गुण अवगुणों की खरी कसौटी तो अब मिलेगी। स्पर्धा अर्थात गुण अवगुणों का मूल्यांकन करने वाली तुला। ठीक है, अब यह हस्तिनापुर जान जाएगा कौन किस किस विद्या में निपुण है। अब गुरु द्रोण के उस लाडले शिष्य अर्जुन का कृत्रिम प्रतिष्ठा का घड़ा उस अखाड़े में धड़ाम से फूटेगा। गुरु द्रोण के अतिरिक्त इस जगत में और भी कुछ है, इसका तो शायद मुझको पता ही नहीं है। स्पर्धा का निष्पक्ष न्यायाधीश ही उसकी योग्यता का प्रमाण पत्र उसको दे देगा। प्रत्येक स्थान पर अपना ही ढिंढोरा पिटवाने वाले अहंकारी अर्जुन, अब तुझे पता चल जाएगा कि लोग प्रेता की जिस भूमि पर तू खड़ा है वह कितनी पोपली है। गुरु द्रोण की छाया में पले हुए कुकुरमुत्ते, अब तुझे ज्ञान हो जाएगा कि तेरे गुरु से मेरे गुरु सहस्त्र गुणा श्रेष्ठ हैं। मेरा मन विचारों का जाल बुनने लगा। युद्धशाला में आज तक जो घटनाएं घटित हुई थी उनका काला धागा मन में हाथ में लगा था। वह स्पर्धा अवश्य होनी चाहिए। वे 8 दिन मुझको 8 युगों की तरह लगने लगे, क्योंकि विगत 6 वर्ष से उस अर्जुन ने मेरा मार्ग अवरुद्ध कर रखा था, मुझे अकेले का ही नहीं बल्कि सभी का। इसीलिए तो गुरु द्रोण को किसी अन्य की ओर ध्यान देने का अवकाश नहीं मिला था। एक दो नहीं, पूरे 6 वर्षों तक उन्होंने अपेक्षा की अग्नि में मेरे कोमल मन के अंकुरों को जलाकर रख दिया था, राख कर दिया था। मेरे स्थान पर यदि कोई होता तो वह हस्तिनापुर को तथा हस्तिनापुर के समस्त आत्म प्रशंसा के संचित उन समस्त पोखरों को ठुकराकर उद्वेग के मारे कब का चलता बना होता। बड़े कष्टों से इस उखान को मैंने आज तक दबा कर रखा था। मैं जानता था कि संसार में भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता। मुझे बिल्कुल ही भुला देने वाले उन गुरु शिष्यों को मैं दिखा दूंगा कि हस्तिनापुर में कर्ण अभी जीवित है। गुरु द्रोण अब जान जाएंगे कि हीरा समझकर उन्होंने जिसको छाती से लगाया था वह अर्जुन केवल चकमक का एक पत्थर है। क्योंकि मैं भी शिष्य था, मेरी भी इच्छा होती थी कि कोई मेरी पीठ पर हाथ फिराकर मुझको शिक्षा दे। मेरी भी इच्छा होती थी कि कोई मेरे कौशल का भी वर्णन करे, परंतु यह मुझको नहीं मिला था। मुझको मिली थी केवल घोर उपेक्षा, किंतु कभी कभी बुराई से भी अच्छाई निकलती है। इस नियमानुसार एक बात अवश्य बहुत अच्छी हो गई थी, उस उपेक्षा से मुझको तेजस्वी गुरु की प्राप्ति हुई थी। साक्षात सूर्यदेव को मैंने गुरु बनाया था। विगत 6 वर्षों से प्रातःकाल 4-4 घड़ी तक मैं एकटक उनकी ओर देखा करता था। विगत 6 वर्षों से बड़ी ममता से अपनी सुनहली अंगुलियां मेरी पीठ पर निरंतर फेरते आ रही थी। जीवन का तेजस्वी तत्व ज्ञान उन्होंने चुपचाप बता दिया था। मेरे हृदय के कुंभ को अपने दिव्य तेज से उन्होंने आकंठ भर दिया था। गुरुदेव, इस स्पर्धा में मैं यशस्वी हो गया तो गुरुदक्षिणा के रूप में मैं आपको क्या दूंगा? इस विश्व के एक एक कोने को प्रकाशवान करने वाले आप जैसे तेज के धाम को मैं दे ही क्या सकता हूँ? तेरे योग्य अपना कुछ मेरे पास है तो बस यह शरीर ही है, और वह मैंने उसी दिन आपके अधीन कर दिया था जिस दिन मैं आपका शिष्य बना था। अब आप अपने शिष्य की गुरुदक्षिणा किससे मांगेंगे? शोणकुल लेकर मैं और अश्वत्थामा नगर के बाहर स्पर्धा के उस अखाड़े में पहुंचे। सभी शिष्य योद्धा उस अखाड़े को सुचित करने के लिए अविराम परिश्रम कर रहे थे। अब लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। कितना भव्य था वह अखाड़ा। उसने एक गोलाकार एक योजन स्थान घेर रखा था। मध्य भाग में प्रत्येक शस्त्र विभाग के लिए अलग अलग एक अखाड़ा था। उन उप अखाड़ों की संख्या 13 थी और वे सभी शस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। पूर्वी महाद्वार की ओर गदा, खड्ग, भाला, चक्र और प्रास, इनके 5 अखाड़े थे। पश्चिमी की ओर शतग्नि, भुशुंडी, तोमर, पट्टिश और शूल के 5 अखाड़े थे। दक्षिण की ओर अश्वारोहण और गजारोहण के लिए विशाल मैदान था। उत्तर की ओर मल्लों के लिए तथा द्वंद्व युद्ध के लिए एक अखाड़ा था। उसमें तक्र और चंदन के तेल से सने विशेष लाल मिट्टी डाली गई थी, जो मगधों के राज्य से लाई गई थी। धनुर्विद्या का भव्य उप अखाड़ा ऐसे स्थान पर बनाया गया था कि अखाड़े में से कहीं से भी खड़े होकर उसको देखो, वह ठीक मध्य में दिखाई पड़ता था। उस अखाड़े में धनुर्धर के लिए 20 हाथ ऊंचा और 20 हाथ लंबा संगमरमर का एक चबूतरा था। उसके लिए पत्थर निषधों के राज्यों से मंगाए गए थे। उस चबूतरों पर कौरवों का त्रिकोणी भगवा ध्वज नीले आकाश को चुनौती देता हुआ फहरा रहा था। पत्थर के चबूतरे पर गुरुवर्य द्रोण निर्णायक रूप में स्पर्धा समाप्त होने तक खड़े रहेंगे। ऐसी स्पर्धा में जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा उसके कंठ में स्वर्ण धागों से गुथे हुए नील कमलों के सम्मान सूचक माला डालेंगे। सारा नगर सजे हुए हाथी पर अंबारी में बैठाकर उसका जुलूस निकालेगा। राजमाता उसको केसर का तिलक लगाकर आदर से उसकी आरती उतारेंगे। हस्तिनापुर के सर्वश्रेष्ठ वीर के रूप में वह समस्त आर्यावर्त में गौरव पाएगा, आदर प्राप्त करेगा। उन सब अखाड़ों के चारों ओर प्रेक्षकों के लिए गोलाकार स्थान था। पूर्व की ओर राजकुल के लोगों के लिए ऊंचे स्थान पर प्रशस्त आसन तैयार किए गए थे। उनके मध्य में पितामह भीष्म का आसन स्थित था। उसके दाएं विदुर का और बाएं महाराज राष्ट्र का आसन था। उन सब आसनों की बाईं ओर एक प्रशस्त तंबू ताना गया था। उसमें झिलमिलाते हुए वस्त्रों के पर्दे लगाए गए थे। उसमें राज स्त्रियों के बैठने की व्यवस्था थी। उस अखाड़े को देखने के लिए नगर के लोग अपने दैनिक कार्यों को छोड़ छोड़ कर आ रहे थे। उस भव्य अखाड़े को देखकर वे सभी दांतों तले उंगली दबा रहे थे। वे लोग आपस में चर्चा करते, कुरुवंश के किसी भी राजा के राज्यकाल में इतना विशाल अखाड़ा बनाए जाने की बात नहीं सुनी गई है। सर्वश्रेष्ठ वीर होने का सम्मान कौन प्राप्त करेगा, भीम, अर्जुन, दुर्योधन या दुशासन? हम लोग लौटने ही वाले थे क्योंकि 100 योजनों की यात्रा कर सभी चंपा नगरी से आए थे। लेकिन अश्वत्थामा बोला, कर्ण, सभी शिष्य योद्धाओं ने यह क्रीड़ांगण सज्जित करने में कुछ न कुछ योगदान किया, तुम दोनों ने क्या किया? तुम बताओ क्या करें? आश्रम कुमार होने के कारण कार्य का सम विभाजन करने का दायित्व उसके ऊपर था। वह मुझको यूं ही छोड़ने वाला नहीं था। वह विचार करने लगा, क्योंकि मेरे पास करने योग्य कोई काम बचा नहीं था। एक सेवक एक अतल सी वस्त्र को लपेट कर बगल में दबाए सामने से भीतर जा रहा था। अश्वत्थामा ने उसको बुलाकर पूछा, क्यों रे, तेरी बगल में यह क्या है? इधर ला, इन दोनों को कुछ तो काम दे। उसके बगल से वह पोटली अश्वत्थामा ने खींच ली। उसके दोनों छोर हाथ में पकड़कर उसको सीधा किया। वह कौरवों का राज चिन्ह था। एक बहुमूल्य अतल सी वस्त्र पर सुनहले जरी के धागों द्वारा बुनी हुई सूर्यदेव की आकृति थी। वह आनंद से मेरी आंखें चमकने लगी। इस राज चिन्ह को मेरे हाथ में देता हुआ अश्वत्थामा बोला, कर्ण, जाओ मध्य भाग में स्थित उस पत्थर के चबूतरे पर खड़े हुए लकड़ी के आसन में इसको लगाओ। उस राज चिन्ह को हाथ में लेकर मैं पत्थर के चबूतरे पर आया। लकड़ी के आसन में पूर्वाभिमुख होकर मैंने उसको लगाया। मेरे लगाए हुए उस गौरवशाली राजचिन्ह को शोर ने फूलों की एक माला पहना दी।